वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, आपको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम फिर से प्रभु के जीत वचन का अध्ययन कर सकें। मैं अपने नए श्रोता मित्रों को बता दूं कि इन दिनों में हम बाइबल की पुस्तकों में से लुका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, जो नया नियम की तीसरी पुस्तक और बाइबल की 42वां पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने यीशु का बैतलहम के गौशाला में जन्म, उसका स्वागत, उसके जन्म की घोषणा चरवाहों को दूत के द्वारा करना, मंदिर में शमौन के विषय की घटना और हन्ना के विषय की घटना। आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाएंगे और इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे। वापस नासरत को लौटना, यीशु, मरियम और यीशु का मंदिर जाना जब वह 12 वर्ष का हुआ, तब अध्याय 3 से यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई और मरियम की वंशावली को देखेंगे। आइए हम नासरत लौटने के विषय में देखें। लुका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 39 और 40 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि लुका एक पूर्ण व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा है। लुका उस बालक यीशु को न केवल प्रसूति विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से देखता है, परंतु वह एक बाल चिकित्सक के दृष्टिकोण से देखता है। प्रभु यीशु शारीरिक रीति से बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। परमेश्वर का अनुग्रह बालक पर था और वह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक रूप से बढ़ता गया। आगे हम देखते हैं कि जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो यीशु, मरियम और यीशु यरूशलेम को जाते हैं। प्रिय मित्र, आगे एक घटना का वर्णन है जिसका वर्णन हमें सिर्फ डॉक्टर लुका ही देते हैं। लुका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह एक बाल चिकित्सक है और वह हमारे प्रभु में एक बालक और एक मनुष्य के रूप में रुचि लेते हैं। डॉक्टर लुका उसके बचपन के एक दृश्य को उजागर करते हैं जब वह सिर्फ 12 वर्ष का था। सुसमाचार में उसके पहले जीवन के विषय में अर्थात उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसलिए कुछ लोग उसके जीवन के इस भाग को शांत वर्ष कहते हैं, पर मैं उन्हें शांत वर्ष नहीं मानता, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि पुराने नियम के शास्त्र वचन इन वर्षों में भरे गए हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लुका का लेख एक विस्तृत और अलग घटना को दर्शाता है जो यीशु के 12 वर्ष की आयु में घटी थी। हम लुका 2 उसके 41 से 45 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसा के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझ कर कि वह और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उससे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। मित्रों, मरियम और यूसुफ एक साधारण और स्वस्थ बालक को बढ़ा रहे थे। वह अपने साथ महिमा को लेकर अर्थात चारों तरफ लिए हुए नहीं दौड़ता फिरा। मध्य युग के कलाकारों में प्रभु यीशु के विषय एक बालक और वयस्क के रूप में कुछ आश्चर्यजनक धारणा है। मैं यह विश्वास नहीं करता कि वह उनके किसी भी विचार की तरह दिखा होगा, वह तो एक साधारण बालक मात्र था। प्रिय मित्र, उन दिनों में लोग एक समूह अर्थात झुंड में होकर यात्रा किया करते थे, और जब यरूशलेम को छोड़ने का समय पहुंचा तो जिन लोगों को गलील जाना था वे सब यरूशलेम के उत्तर में बसे एक छोटे नगर में इकट्ठा होने लगे ताकि वे अपनी यात्रा को आरंभ कर सकें और वे घर पहुंचे। यही वह स्थान था जहां पर उन्होंने अर्थात यीशु को छोड़ दिया। संभवतः यूसुफ ने मरियम से कहा होगा कि यीशु कहाँ है, और मरियम बोली होगी, मैंने सोचा कि वह आपके साथ है। उन्होंने उसे अपने लोगों के मध्य में चारों तरफ ढूंढा, जिन्हें वे जानते थे, और जब उन्होंने जान लिया कि वह छूट गया है तो वे यरूशलेम को लौट गए। उन्होंने उसे 3 दिन तक ढूंढा परंतु उसे ना पाए। आपको क्या लगता है कि उन्होंने उसे कहां पर पाया? वह मंदिर में था। हम लूका 2:46-50 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों किया, अर्थात ऐसा व्यवहार तूने क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। प्रिय मित्र, अंततः जब मरियम और यूसुफ ने उसे मंदिर में पाया तो वह उस युग के सीखे हुए विद्वानों के मध्य में खड़ा था, और वह उनकी सुन रहा था और उनसे प्रश्न पूछ रहा था। वह स्पष्ट रूप से उनसे प्रश्न पूछ रहा था और वे उसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे, और वे सब उसके उत्तर से चकित भी होते थे। आप याद करें कि वह सिर्फ 12 वर्ष का था। मित्र, मैं सोचता हूं कि यह स्पष्ट है कि यूसुफ और मरियम उसके साथ थोड़ा भड़के हुए थे। यीशु के उत्तर ने उसके आश्चर्य को प्रकट किया कि वे इस बात को ध्यान नहीं दिए कि उसे उसके पिता के घर में अर्थात कार्य में होना चाहिए था। अब यदि यूसुफ उसका पिता होता तो उसके पास ऊपर आता और कहता, अच्छी बात है, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा होता कि तुम यहाँ यरूशलेम में कोई बढ़ई का काम ले लेते। जी नहीं, यूसुफ उसका पिता नहीं था। वह अपने स्वर्गीय पिता के कार्यों के बारे में बता रहा था, और इस समय मरियम ने उसके कार्यों की कुछ भी प्रशंसा नहीं की कि वह कौन था और उसके काम का भार क्या है, परंतु उसने इन सब बातों को अपने हृदय में रखा। हम लूका 2:51-52 पद में पढ़ते हैं, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु अपने माता पिता के अधीन था। इस सत्यता के प्रकाशन में यह एक मजेदार बात है। आज जवान लोग विरोध कर रहे हैं और अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। मैंने उनकी बातों को सुना है और मैंने अब तक उन्हें ऐसा कुछ कहते नहीं सुना है, सिर्फ उतना ही जितना प्रचार और प्रसारण ने उनके विषय में रेडियो और टीवी में दिया है। मैं व्यक्तिगत रीति से ऐसा नहीं सोचता हूं कि महाविद्यालय के किसी विद्यार्थी के पास कहने के लिए कुछ है। चाहे उसमें कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धिमता हो, वो अपनी समझ में अभी भी पीछे है। जो जानकारी उसे मिली है वो अभी बहुत कम और सीमित है। उसकी जांच पड़ताल के लिए उसके पास अनुभव नहीं है। यह बहुत ही विलक्षण बात है कि यीशु मसीह ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उनके अधीन रहा। मित्रों, जो जानकारी उसे दी गई है वह सीमित और पक्षपातपूर्ण है, और वह उसके पास इसका मूल्यांकन करने का भी अनुभव नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु बालक जो परमेश्वर का पुत्र है उसने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उनके अधीन रहा। डॉक्टर लूका हमें यीशु के बढ़ने के उन शांतपूर्ण वर्षों के बारे में बताते हैं जब यीशु जवानी की ओर बढ़ रहा था। वह बुद्धि में बढ़ा मानसिक रीति से, और डील डॉल में शारीरिक रीति से, परमेश्वर के अनुग्रह में आत्मिक रीति से, और मनुष्य के अनुग्रह में सामाजिक रीति से बढ़ता गया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मानवता की ओर बढ़ रहे थे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है, लेकिन हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। इस अध्याय में हम इन विषयों को देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई, यीशु का बपतिस्मा और मरियम की वंशावली। प्रिय मित्र, लूका एक सच्चे इतिहासकार के साथ यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई को सांसारिक इतिहास के साथ दिनांकित करते हैं। वह यूहन्ना के पश्चाताप के संदेश पर अधिक जोर देते हैं जो यीशु मसीह के आने की स्थिति के लिए है। मित्रों, मूसा की व्यवस्था के अनुसार पानी में धोना, जो उन दिनों में डुबकी लगाना एक सामान्य रिवाज था। यूहन्ना के पास जो लोग आए उनको सिर्फ यीशु मसीह के आने की तैयारी के लिए उसने बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, जो एक वास्तविक रूपांतरण होगा। प्रिय मित्र, इस अध्याय में हम मरियम के वंशावली को भी पाते हैं जो दो सच्चाइयों को प्रकट करती है। सबसे पहले यह हमें आदम तक पीछे की ओर ले जाती है जो मानव जाति के परिवार का पिता है। यीशु पूर्णतः मनुष्य था और मत्ती यीशु को एक राजा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अब्राहम के वंशावली तक पीछे जाता है, परंतु लूका यीशु को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आदम तक जाता है। और दूसरी ओर मरियम दाऊद की वंशज से थी जो सुलेमान से नहीं परंतु दाऊद की संतान नातान से है। हम इसे पहला इतिहास की पुस्तक 3:5 में देखते हैं। आइए अब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवा को देखें। इस अध्याय में हमें एक महान विचार का वर्णन मिलता है जिसे लूका एक यथार्थता का अग्रही के रूप में हमें देता है। लूका 3:1 में लिखा हुआ है, तिबिरियुस कैसर के राज के 15वें वर्ष में जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का, इतुरैया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पद में 6 चरित्र पाए जाते हैं जो हमें समय निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय कैसर अगस्तुस राजा था, परंतु जब यूहन्ना ने अपनी सेवकाई आरंभ की तब तिबिरियुस कैसर राजा था। सांसारिक इतिहास जो हमें अधिक जानकारी प्रदान करता है यह बताता है कि तिबिरियुस बुद्धिमान था परंतु क्रूर था। वह चतुर परंतु धूर्त था। वह निष्ठुर और धर्मनिरपेक्ष था। उसने विश्व को चलाने की कोशिश की। आगे हम उन कठपुतली बने राजाओं के नाम को पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 3:2 उसके 2 में लिखा हुआ है, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकर्याह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। हन्ना और कैफा महायाजक थे। अब प्रश्न है कि वहां पर दो महायाजक क्यों थे? ये दो महायाजक रोमी साम्राज्य की शक्ति को प्रकट करते थे जो उन दिनों में यरूशलेम के धर्म के ऊपर थे। हन्ना सिंहासन के पीछे की शक्ति था, परंतु कैफा वह था जिसने रोम को सामने रखा। प्रिय मित्र, एक साधारण अनुभव जो यूहन्ना के लिए हो सकता था, वह भी अपने पिता की तरह मंदिर में सेवा करता जैसे उसके पिता ने की थी। वह एक अगुआ बन सकता था, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बदले में वह एक निर्जन प्रदेश में गया और अपने याजकीयपन से संबंध को तोड़ दिया। वह भ्रष्ट प्रणाली में कार्य करना नहीं चाहता था और इसीलिए वह एक भविष्यवक्ता बन गया। यहाँ पर तस्वीर यही है कि यूहन्ना एक याजक था और वह एक भविष्यवक्ता बन गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन प्रभावशाली चरित्रों में से एक है जो समय समय पर उपस्थित होते हैं। उसने एलिय्याह के बारे में लोगों को स्मरण दिलाया क्योंकि उनकी विधियों में कुछ निश्चित समानताएं थी। उसने लोगों को यह भी स्मरण दिलाया कि वह जो एक दिन आने वाला है वह मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला एक विरोधाभासी व्यक्ति था। वह पूर्णतः एक साधारण व्यक्ति था। लूका ने हमें उसके चमत्कारिक जन्म के बारे में बता दिया है। यह जिब्राइल स्वर्गदूत की उपस्थिति के द्वारा से हुआ था। उसका पूरा बचपन खत्म हो गया है और उसके जीवन की अगली घटना उसकी सेवकाई का आरंभ है। मित्र, वह एक याजक, एक भविष्यवक्ता और एक उपदेशक था। वह बचपन से ही याजक था क्योंकि वह जकर्याह का पुत्र था, परंतु वह परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया गया। हम लूका 3:3 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और वह यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। हम देखते हैं कि यूहन्ना मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता है। वह भविष्यवक्ताओं में अंतिम भविष्यवक्ता है। वास्तव में वह एक पुराने नियम का चरित्र है जो पुराने नियम से निकलकर नए नियम के पन्नों में पहुंचता है। वह अनोखा दाढ़ी वाला और झबरा है जो ऊंट के चमड़े का रोएदार वस्त्र पहने हुए है। वह अपने वस्त्र के पहरावे में भिन्न है। उसका भोजन और उसका दिखावा भी भिन्न है। वह भी उसी स्वागत को प्राप्त करेगा जो बहुत से भविष्यवक्ताओं को प्राप्त हुआ था कि वह भी मार डाला जाए। प्रिय मित्र, आज भी संसार में सबसे अधिक स्वागत नहीं किया जाने वाला संदेश भविष्यवक्ता की आवाज है। संसार उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके जीवन के तत्व ज्ञान का विरोध करता है। यदि आप प्रचलित होना चाहते हैं तो आपको भीड़ के साथ सुर में सुर मिलाकर गाना होगा, और यह बात उपदेशकों के लिए भी सच है। परमेश्वर प्रवचन मंच पर दया करे। जो संसार में कुछ भी नहीं है परंतु कलीसिया के लोगों का कहना है कि वह जोर से प्रसारित करने वाली जगह है। प्रिय मित्र, संसार परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता है, विशेष करके जब आवाज न्याय के बारे में बोला जाता है, और यूहन्ना का संदेश बहुत कठोर था। हम लूकार के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 4 से 7 पद में पढ़ते हैं, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मित्रों, मैं आश्चर्य करता हूं कि एक उपदेशक किसी कलीसिया में कितने समय तक रह सकता है। यदि वह अपना रविवार संदेश इस प्रकार के शब्दों से आरंभ करे कि हे सांप के बच्चों, तो मैं नहीं सोचता कि वह अगले रविवार को प्रवचन मंच में होगा। लोग तुरंत उसे दूर कर देंगे, और मैं यूहन्ना के इस असाधारण परिचय को एक संदेश के लिए उपयोग करने का परामर्श नहीं देता, परंतु मैं यह अवश्य सोचता हूं कि यह कई कलीसियाओं के लिए अवश्य ही ठीक होगा। हम लूका 3:8 पद में पढ़ते हैं, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रिय मित्र, यूहन्ना का संदेश एक पश्चाताप का संदेश था, और वास्तव में यह संदेश आज हमारा संदेश नहीं है, यद्यपि पश्चाताप विश्वास में है। 1 थिस्सलुनीकियों 1:9 पद में पौलुस कहते हैं, मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मेरे मित्र, आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ सकते हैं जब तक कि आप किसी चीज से न मुड़े। जब आप किसी की ओर मुड़ते हैं तो आप किसी अन्य वस्तु की ओर से मुड़ते हैं। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो आप पाप से फिर कर मुड़ते हैं, और वही पश्चाताप है। जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आप संसार की वस्तुओं से फिरने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुना है, परंतु आप उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए हैं, और आप आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों है। मेरे मित्र, आपको उस आवाज को, उस पुकार को सुनने की आवश्यकता है जो निर्जन प्रदेश में पुकार रहा है, मन फिराओ और पश्चाताप करो। पश्चाताप बचाने वाले विश्वास का एक भाग है। पश्चाताप एक घंटे तक का संदेश नहीं है। हम परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करते हैं, परंतु यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करने वालों में से हैं और उसकी ओर फिरे हैं, तो आपको अपने पापों से उसकी ओर फिरना होगा। यदि आप अपने पापों से नहीं फिरते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर की ओर नहीं फिरे हैं। मित्रों, उद्धार में पश्चाताप शामिल है, परंतु आज परमेश्वर का संदेश प्रेरितों के काम 16:31 पद में हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। आगे हम लूका 3:9 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यूहन्ना के दिनों में जो पेड़ नहीं फलते थे वे बेकार होते थे, और उन्हें काटा और आग में जलाया जाता था, अर्थात जलावन के काम में लाया जाता था। यूहन्ना का संदेश कठोर है। यूहन्ना परमेश्वर के छुटकारे के प्रेम के संदेश को नहीं लाया। वह उस संदेश को देने के लिए नहीं बुलाया गया। उसका संदेश सन्निकट न्याय का था। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यह परमेश्वर के संदेश का एक पक्ष है जो हमारे दिनों के लिए भी है। इसराइल राष्ट्र इतना अधिक फलदायी नहीं था जितना परमेश्वर ने उनसे उम्मीद की थी, इसलिए अब परमेश्वर का न्याय उनका एक भाग होने जा रहा था। प्रिय मित्र, यूहन्ना उनसे अर्थात इसराइल से कह रहा था कि यदि वे फल उत्पन्न नहीं करते हैं तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर धरा हुआ है, और आज प्रभु यीशु मसीह वही बात कलीसिया से कह रहे हैं। हम लूका 3:10-11 पद में पढ़ते हैं, और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। यूहन्ना इसराइलियों से सरल और समझने लायक भाषा में कह रहा था कि वे स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, और जो कुछ उनके पास है वे दूसरों के साथ बांटने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम लूका 3:12-13 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। हम देखते हैं कि नाकेदार जो महसूल लेते थे, जो अपने लालची स्वभाव से जाने जाते थे, जो भी हो, वे यूहन्ना के पास आकर उनसे पूछने लगे कि हम क्या करें। वे लोग भी प्रभु की ओर फिर गए। लूका 3:14 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें। उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। प्रिय मित्र, यूहन्ना ने यह बहुत ही व्यवहारिक संदेश लोगों को दिया जो अलग अलग वर्ग और परिस्थितियों से वहां पर आए थे। यदि आप एक मुद्रक हैं तो आप जिस तरीके से मुद्रित करते हैं उसी के द्वारा से आप एक मसीही होने को प्रकट करते हैं। यदि आप एक सैनिक हैं तो आप अपनी मसीहत को आप जिस प्रकार के सैनिक हैं उसके द्वारा प्रकट करते हैं। और यदि आप एक गृहिणी हैं, आप अपनी मसीहत को आप जिस प्रकार की गृहिणी हैं उसके द्वारा से प्रकट करती हैं। कहने का मतलब है कि आप जो हैं उसी को प्रकट करते हैं। मत्ती 7:20 पद में लिखा है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तब हम आगे पढ़ते हैं लुका 3:15-17 पद में लिखा हुआ है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। यूहन्ना इस बात को स्पष्ट करता है कि उसका यह संदेश अंतिम नहीं है, वह उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा है जो आने वाला है। मित्रों, यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह 1900 वर्षों से भी अधिक समय से पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे रहे हैं। वह अपने दूसरे आगमन पर आग से बपतिस्मा देंगे और आग न्याय को दर्शाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह उद्धरण पेंतिकोस्त के दिन का है जब पवित्र आत्मा आया और तब उन लोगों के सिर पर आग की उपस्थिति थी जो वहां पर इकट्ठे हुए थे। मित्रों, जो भी हो, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रेरितों के काम 2:3 में जो लिखा हुआ है, आग की सी, अर्थात यह आग नहीं थी। पवित्र आत्मा का आना आग से बपतिस्मा देने की भविष्यवाणी का पूर्ण होना नहीं था। यह घटना हमारे प्रभु के दूसरे आगमन के समय होगी। हम लूका 3:19-20 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्म के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। मित्रों, यूहन्ना ने हेरोदेस की उलाहना सबके सामने की क्योंकि उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था। हेरोदियास इस बात से अति क्रुद्ध थी, इसलिए उसने मांग की कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया जाए और तब हेरोद ने उसकी इच्छा को पूरा किया और यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवा दिया। अब हम देखेंगे यीशु का बपतिस्मा। लूका 3:21-22 पद में हम पढ़ते हैं, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाय उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मित्रों, ध्यान दें कि लूका घटनाओं को क्रमानुसार तरीके से देने का प्रयत्न नहीं कर रहा है क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो यूहन्ना के पकड़वाए जाने से पहले ही वह यीशु की बपतिस्मा के विषय में लिखता, जो उसने नहीं किया। मित्रों, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय त्रिएक परमेश्वर का प्रगटीकरण हुआ है। पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा जो त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य भी है और स्वर्गीय पिता स्वर्ग से बात करते हैं। आइए अब हम आगे मरियम की वंशावली को देखें और इस अध्याय का बाकी हिस्सा मरियम की वंशावली के विषय में बताता है, न कि यूसुफ के विषय में। हम यूसुफ की वंशावली को मत्ती सुसमाचार में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की वंशावली इब्राहिम से आरंभ होती है और प्रभु यीशु मसीह तक आती है जो दाऊद और सुलेमान से होकर पहुंचती है और सिंहासन का वैदिक अधिकार यूसुफ से होकर आया। परंतु लूका रचित सुसमाचार की वंशावली भिन्न है, यह मत्ती रचित सुसमाचार के विपरीत क्रम में दी गई है। लूका पहले दाऊद तक जाता है, उसके बाद आदम तक। लूका मरियम की कहानी को देता है और यह स्पष्ट रूप से उसी की वंशावली है। मित्रों, दाऊद का राजसी लहू मरियम के नस में से भी होकर बह रहा था और यीशु का लहू मरियम से होकर आया था जो दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। इस वंशावली के विषय में दो मुख्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, डॉक्टर लुका इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के पिता नहीं थे। लुका 3:23 में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। यहाँ इस वंशावली में पुत्र शब्द का प्रयोग जिस तरह से हुआ है वह अन्य पंडुलिपियों में नहीं है। यूसुफ हेली का पुत्र नहीं था, परंतु पुत्र शब्द को पिता से वंशावली दिखाने के लिए जोड़ा गया। पिता वह है जो घर का स्वामी होता था। दूसरे शब्दों में कहें कि वंशावली पुरुष के नाम के अनुसार लिखी गई है। मतीरजी सुसमाचार में जहां पर वंशावली यूसुफ से दी जा रही है, लिखा है कि और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे ध्यान देना आवश्यक है, हम पद 31 में पढ़ते हैं, और वह मलेआह का, और वह मीनाह का, और वह मत्ता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का। मित्रों, मती यीशु के वंशक्रम की खोज दाऊद के पुत्र सुलेमान से करता है जो एक राजसी वंशक्रम है, परंतु लुका यीशु के वंशक्रम की खोज दाऊद के पुत्र नातान से करता है और मरियम के नसों में भी दाऊद के वंश का खून था, इसलिए यीशु मसीह दाऊद की संतान है। लुका यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र और संसार का उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाता है। उसका वंशक्रम इब्राहिम तक ही सीमित नहीं जाता है, परंतु यह आदम तक जाता है जो परमेश्वर का पहला पुत्र था और परमेश्वर के द्वारा रचा गया पुत्र था। परंतु जब उसने पाप किया तो वह उस ऊंचे पद से गिरा दिया गया, अर्थात गिर गया। यीशु मसीह जो अंतिम आदम और परमेश्वर का पुत्र है, इस संसार में आया कि वह मानव जाति के संबंध को परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित करे, जिसे आदम ने पहले खो दिया था। मित्रों, यह संबंध सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आज हमारे लिए भी एक मौका है कि हम अपने टूटे संबंध को यीशु में विश्वास के द्वारा जोड़ सकते हैं, ताकि हम फिर से उस आनंद को प्राप्त कर सकें जो एक पुत्र को होता है। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है, आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे और इसी तरह आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
खुशी की है खबर, सुना दो हर नगर, सारे जहां का राजा आ गया, हमारा मंजी यीशु आ गया। खुशी की है खबर, सुना दो हर नगर, सारे जहां की है खबर, सुना दो हर नगर।